वन फोर्थ के करीब में प्रेम है, दास्य प्रेम, इसलिए उतने तक का स्वादन करते हैं। सखाओं में, ब्रज के सखाओं में ये तीन तक हैं, शांत दास्य सख्य। उसमें सख्य भाव से कृष्ण को का प्रेम आस्वादन करते हैं, देख करके कृष्ण को उनको बड़ा आनंद होता है। और इससे अधिक जसोदा मैया नंद बाबा को उससे भी अधिक ममत्व उनके प्रति है, इसलिए उनको अधिक आनंद होता है। और उससे भी आनंद किसको होता है, गोपियों को। गोपियों में भी तारतम्य है, जिसको अधिक प्रेम है वो अधिक रखता है। श्रीमती राधिका में ये सबसे अधिक है, इसलिए कृष्ण को देखते ही इनकी ऐसी स्थिति हो जाती है महामादन मोदन तक, जो और किसी में नहीं है। इसलिए कृष्ण को का देख करके या इनको देख करके कृष्ण को जो प्रीति होती है वो सब कुछ निर्भर है प्रेम के ऊपर में, जिसमें गोपियों में सबसे अधिक है। उन गोपियों में भी राधा जी की काय स्वरूपा जो गोपियां हैं, उनकी पक्षी जो गोपियां हैं, ललिता विशाखा इत्यादि हैं, उनमें जो भाव है मोदन तक है मोहन, अर्थात उनमें भी कभी कभी ये उन्माद, प्रेमोक दिव्य उन्माद, और उनमें भी कभी कभी आंशिक रूप में प्रेम वैचित्र इत्यादि देखा जाएगा। किंतु राधा जी का अंतिम जो भाव है मिलन में भी विरह, अब विरह में मिलन और भी परिपूर्ण रूप से और किसी में नहीं है। इसलिए असली स्वाद जो श्लोक है वो केवल श्रीमती राधिका जी के लिए है, कृष्ण उस चीज का आस्वादन करने के लिए आते हैं। और ये ब्रज के अतिरिक्त और कहीं नहीं है, ब्रज में ही केवल है। परसों हमने तारतम्य मूलक दृष्टि से बतलाया था, इसलिए कह रहे हैं पारकिया भावे अति रसद उल्लास, ब्रज बिना नहीं यहाँ अन्यत्र नहीं वास। ब्रज वधु गणे यही भाव निरवधि की ओ भार यहाँ हो गया, तार मध्य राधिकार भावेर अवधि, राधिकार अवधि जैसा भी बनता है, कृष्णेर माधुर्य रस आस्वादन कारण अतएव से ही भाव अंगीकार करी साथ लेने निज वंछा गो। गौरहरि इसी भाव को लेकर के इस जगत में आए, इसी के लिए हमारे चैतन्य चरितामृत कार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्तवमाला से रघुनाथ रूप गोस्वामी के दो श्लोकों को लिया, चैतन्य अष्टक प्रथम, चैतन्य अष्टक द्वितीय का श्लोक, जिसमें पहले वाले का हमने व्याख्या की, सुरेशानंग दुर्गम गति अतिशयन उपनिषदा मुनिनांग सरवस्वंग प्रणत पटरीनांग मधुरिमां विनिज्यास प्रेमणो निखिल पशुपालंबुज दृशा स चैतन्य किंग में पुनरपि दृशोज्यास। ये हमने व्याख्या किया, साधारण इसका ये अर्थ सुरेशानंग दुर्गम, देवताओं के लिए जिन चैतन्य महाप्रभु को समझना बड़ा भारी कठिन है, दुर्गम है, दुर्बोध्य महाप्रभु जी का तत्व। और उपनिषदों के लिए भी कुछ कुछ गम में है थोड़ा सा, कौन से उपनिषद, गोपाल तापनी इत्यादि। और मुनिनां सर्वस्वम, मुनियों के लिए सर्वस्व है। और प्रणत पटली नांग मधुरिमा, जो प्रणत शरणागत जो दास भक्ति वाले जो दास हैं उनके लिए वो मधुरतम मधुर विषय है, मधुरिमा उनके लिए माधुरी है, हनुमान इत्यादि दासों के लिए, ब्रज के दासों के लिए। और निखिल पशुपालंबुज दिशा, निखिल माने समस्त पशुपाला अंबुजा, पशुपाला गोपी, और दृशांग अंबुज दृशांग कमल नयनी जो गोपियां हैं उनके दृशांग दृश्यांग माने आंखों में जो रस निर्जास है वही चैतन्य महाप्रभु। गोपियों के आंखों में सब समय बसने वाले, अपनी आंखों से जिनकी प्रेम पूर्वक आरती उतारती हैं, गोपीनां नैनोत्पलार्चितनम गो गोप संघावृतम गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांगम भूषा भजे। तो वो प्रेम के निर्जास हैं, कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। वो क्या अब हमें दिखाई पड़ेंगे? रघुनाथ दास को हमारे आंखों के सामने पुनः आएंगे? किस लिए ये पूछ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं? हाँ, वो तो अब अप्रकट लीला में चले गए, क्या अनुग्रह करके फिर आएंगे, हमारे आंखों के सामने प्रकटित होंगे? हो सकते हैं, क्योंकि भक्तों के हृदय में वो जब तब कभी भी दर्शन दे सकते हैं। अभी वृंदावन में जैसे कृष्ण दर्शन देते हैं वैसे दे सकते हैं, इसलिए अब फिर कभी आ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। अपारम कस्यापि प्रणय जन वृंदस्य कुतुकी रसोस्तो महित्वा मधुरमुपभोक्तम कमपि यः कदा स्वमब्रे द्वितीमिह ददीयं प्रकटयन् स चैतन्य आकृतितरं नः कृपयतु। अपारम कस्यापि प्रणय जन वृंदस्य कुतुकी, प्रणयजन वृंदस्य कुतुकी, प्रणयजन कृष्ण के जो प्रणय के जो पात्र हैं, प्रणयी लोग हैं। सोमत भाई खूब अच्छी तरह से सुनने की चेष्टा करो, कृष्ण के जो प्रणयी हैं, प्रणयी माने कृष्ण के प्रति प्रणय करने वाले, और कृष्ण जिसके प्रति प्रणय करते हैं, ये दोनों भाव कौन है? ब्रज के सभी लोग हैं, सभी लोगों में ब्रज के सख्य भाव मिश्रित या वात्सल्य भाव मिश्रित जो दास्य हैं, वो लोग भी कृष्ण के प्रणय प्रति प्रणय रखते हैं, किंतु प्रणय का अर्थ माने वो प्रणय से प्रणय जो हुआ है वो नहीं, वो दास्य भक्ति में नहीं है। स्नेह मान प्रणय जो है, जब प्रेम बढ़ करके स्नेह हो जाता है और स्नेह बढ़ करके मान हो जाता है और मान बढ़ करके जब प्रणय हो जाता है, अथवा स्नेह बढ़ करके प्रणय हो करके फिर मान होता है, दोनों तरफ से वो जो प्रणय है वो एक दूसरा चीज है, वो प्रणय यहां पर बतलाया जा रहा है। ये किस में है? सखाओं में भी है, उनके प्रणयी हैं, मित्र हैं वो है। ये प्रणय भी दो प्रकार का, सुसख्य और मैत्री ना? एक कुसुम्भराग युक्त और एक मंजिष्ठा। हाँ, वही प्रणय में दो प्रकार का, वहीं से आरंभ हुआ, एक मध्यत्त भाव एक तदीयत्त भाव। सखाओं में कुछ कम, अब इसे बढ़कर के माता जी में कुछ, कृष्ण मेरा बेटा है, कृष्ण की मैया मैं हूं, और गोपियों में यह भाव प्रबल होता है जिसमें एक होता है कि कृष्ण की मैं हूं। तदीय एक प्रणय होता है, तदीय भाव युक्त कृष्ण की मैं हूं, बहुत ही कठिन है ये बात, कृष्ण की मैं हूं, कृष्ण हमारा संपूर्ण से पालन पोषण करना इत्यादि सब कुछ वही करते हैं, एक भाव तो ये। और दूसरा क्या है? कृष्ण मेरे हैं, मैं जैसे उठाऊंगा बैठाऊंगा कृष्ण ऐसे उठे बैठेंगे। दोनों में गंभीर किसका हुआ? ये मध्य भाव वाला। इसमें जो विपक्षा सखियां हैं चंद्रावली इत्यादि, उसमें तदीय भाव है। यही मुख्य दो कारण है सखियों के विभाग का, मैं मात्र दो कारण, तदीयत्ता मतलब जो तदीय के निकट है वो विपक्ष का प्रिय, विपक्ष का सुहृद है, और जो स्वपक्ष माने जो मदीय भाव है उसके जो निकट है वो शहीद हो गया। विपक्ष का सुहित, स्वपक्ष का तटस्थ, और उसका तटस्थ इसका, इस प्रकार से है। तो यह जिसमें एक होता है, कोई चीज एक रंग दिया जाए, जैसे फूल है, लाल लाल फूल, फूल एक होता है, सूरज की किरणों से थोड़ी देर के बाद में वो फिर सफेद हो जाएगा, उसका रंग उठ जाएगा, कच्चा रंग, और मंजिस्टर रंग है जो जितना सूरज उगता जाएगा उतना वो गाढ़ा होता जाएगा, उसको पानी से धो तो और चटकीला हो जाएगा। जैसे आप लोग ऊंचा गांव में जाइए तो देखेंगे ललिता जी के अलता पहाड़ी में, ऐसे नहीं दिखेगा, पानी से जहाँ धो दो, घी लगा दो, कोई ऐसा रसस, तो एकदम चटकीला हो जाएगा। कहे नहीं कब से है, अजय बीच बीच में लगा देते हैं रंग, नहीं ऐसा नहीं। सनात हम लोग के वो परिक्रमा की जो पुस्तक है, क्या नाम, नरहरि शक्त भत्नी रत्न, और उससे पहले पद्म पुराण इत्यादि में उसका बतलाया गया जो वहां पर अलता पहाड़ी है उसका रंग ऐसा है। इसलिए आजकल लगा करके फिर चटकीला कर देते हैं, ऐसा नहीं, वो हजार पानी से धो नहीं उठेगा। ये है मदीय भाव, ये प्रणय जो है केवल राधिका जी के ही गढ़ में। अब यहीं से आरंभ हो करके कहां तक पहुंच जाएगा, तो ये जो प्रणय है, प्रणयी जन, ऐसे जो प्रणयी कृष्ण के प्रति हैं, माने गोपीगण, और भी प्रणयी हैं किंतु इनमें मुख्य है गोपियों जन में भी। यहाँ पर यद्यपि प्रणयी जन बृंदस्य, प्रणयी बृंद माने समस्त गोपियों के, किंतु मूल राधा जी का भाव लेकर के आए थे। अपारम कश्यापि, कश्य अपि, गोपियों के जो समूह हैं उनमें से किसी एक का भाव लेकर के जो आने वाले, वे कौन, वही श्रीमती राधिका जी, उन्हीं का भाव लेकर के ये आए हैं, और सब इनकी काय व्यूह है, वो लता हैं और बाकी सब उनके पत्र पुष्प हैं। तो वो कौतुकी, कौतुकी माने रस लोलुप, ऐसे वो लोलुप हैं कि एक मैया के दूध से उनका पेट नहीं भरा। बलदेव जी कह रहे, अरे तू कैसा इतना रूप धारण किया है, इतने बछड़े और इतने गोप कुमार तू बन गया, किस लिए? एक मैया यशोदा जी का दूध पीने से पेट नहीं भरता, तो इतनी गोपियों का बेटा तू बन गया, इतना, और उसे भी पेट नहीं भरा तो इतनी गायों का बेटा बन गया, बछड़ा बन गया, तो अद्भुत बात। तो वो कौतुकी अतः तो रस लोलुप हैं। एक गोपी श्रीमती राधिका जी काय व्यूह करके अनंत गोपियों के रूप में प्रकटित हो जाती है, उससे भी नहीं हुआ तो राधिका जी ने क्या किया, और अपना प्रकाश द्वारका में 16108 को, उससे भी नहीं हुआ बैकुंठ में, उससे भी नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, राधा जी ने अपना जो संबित और सार है, वो जो प्रेम, वो जीवों के स्वरूप में निक्षेप किया, और निक्षेप करके प्रत्येक जीवों का रसास्वादन करा दिया। कुतुकी रसोस्तोमम हृत्वा, उनके रस समूह को हृत्वा माने हरण कर, चोरी कर, मधुरम उपभोक्तम, उनके इस मधुर भाव को उपभोग करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए, कमपिजा रुचम स्वाम आबब्रे। जो राधिका जी के कश्यापी जो राधा जी हैं उनके रुचि मैंने अंग कांति से अपने को सम मैंने अपने को अबब्रे आवृत कर दिया, अपने को आवृत कर दिया और राधा जी का अंग कांति ग्रहण करके और उसका विस्तार किया। ऊपर से लोग देखते हैं कौन है गौरंग, और भीतर से कौन है
अंत कृष्ण।
क्यों ऐसा किया? एक चोर है, चोरी करने गया, जैसे गृह मालिक सोया है खाट पर और उसकी चादर पड़ी है, उसने इस ढंग से गृह मालिक को ढक दिया और ढक करके उसकी चादर ले ली और उसकी चादर लेकर के अपने को ढक लिया। जो जो घर वाले यदि हमको देख भी लिया तो ये समझेंगे कि वही घर का मालिक ही है, और आम रखा है या कुछ रखा है उसको चुरा करके खाने लगा, दे करके भी नहीं सकते। अर्थात कभी कभी चोरों को देखते हैं वो यहाँ पर मूछ लगा लेंगे काला, और मुख को कपड़े से ढक करके केवल आंख से देखते हैं, जिसको देख करके कोई समझ नहीं पहचान नहीं सकता। वेश बदलना जरूरी है चोरों के लिए, डकैत भी ऐसा कर यदि देख लिया जो वो पहचान गया तो उसको कत्ल कर देंगे, तो जान लेंगे। तो इसीलिए इन्होंने राधिका जी का भाव लिया चोरी करके। और दूसरा बात था जो पहले बतलाए हैं, बिना वो प्रणय का भाव जो राधिका जी में है वो आस्वादन अपने आप वो तीन प्रकार की माधुरी को नहीं करें। इसलिए अंदर से उनके भावों को चोरी किया और ऊपर से उनके अंग कांति को ग्रहण करके इस जगत में आए। इसलिए चोरी किया, आस्वादन करना है भाव के द्वारा आस्वादन होगा, किंतु इनको कोई चोर को पकड़ न सके इसलिए ऊपर से ये कांति ढक करके अपने को कृष्णत्व को ढका करके ऊपर से गौर वर्ण किया। लोग न समझे इसलिए अंत कृष्ण बहिर्गौर दर्शिता अंग वैभवम। नहीं दूसरा कुछ है। एक का घाट दूसरे पर देता है। कौतुकी रसस्तोमम हृत्वा अपहरण करके मधुरम उपभोक्तम, मधुर रस को उपभोग करने के लिए चार प्रकार तीन प्रकार की जह जो कृष्ण रुचम समावाबरे अपने को ढक लिया। आद्यूतम इह उनकी दूती से, किसकी कश्यापि प्रणयजन की, कोई किसी एक प्रणय और तदीयांग प्रकटन जह चैतन्य चैतन्य आकृति तराम न कृपयतु। वो चैतन्य महाप्रभु हमको अनुग्रह करें। कब अनुग्रह करेंगे? भार ग्रहण हेतु करिल धर्म स्थापन, तार मुख्य हेतु कही सुन सर्वजन। हे सर्वजन श्रोता लोग आप सुनिए, भार भाव ग्रहण हेतु करिल धर्म स्थापन, तार मुख्य हेतु कही सुन सर्वजन। भाव ग्रहण का हेतु मैंने बतलाया है पहले, करिल करिल माने कहिल, ऐसे समझ में सज नहीं आएगा इस तरह से समझना, नहीं तो समझ जाएगा जैसे भाव ग्रहण हेतु करिलो धर्म स्थापन, भाव ग्रहण के हेतु धर्म की स्थापना की, तो इसका अर्थ क्या होगा? भाव ग्रहण के हेतु धर्म का स्थापन किया, भाव ग्रहण हेतु माने धर्म का स्थापन, धर्म के स्थापन के लिए भाव ग्रहण किया न, क्या होगा? इसलिए भाव ग्रहण हेतु कहिला मैंने पहले कहा, और धर्म स्थापन तार मुख्य हेतु कही, और धर्म स्थापन भी मैंने कहा जो धर्म स्थापन उनका मुख्य अंग नहीं है, कारण नहीं है ने? अब मैं तार मुख्य हेतु कही सुनो सर्वजन, अब उसका मुख्य जो हेतु है अब मैं बतला रहा हूं। भाव ग्रहण भी किया किस लिए, ये मुख्य अंग नहीं है। हमने कपड़ा ओढ़ लिया किसी का और चोरी करने के लिए गए, ये हमने जो कपड़ा ओढ़ा किस लिए, चोरी करना हमारा मुख्य उद्देश्य। उसके घर में रत्न है, रत्न को चुराना हमारा मुख्य उद्देश्य, कपड़ा हमने ढक लिया। तो उन्होंने जो भाव लिया किस लिए, आस्वादन करने के लिए, ये अभी बतलाया है ना, जिस हेतु को लेकर के आए हैं। अब धर्म का जो स्थापन है ये भी मैंने बतलाया, ये मुख्य कारण नहीं है। अब जो जिस हेतु से उन्होंने भाव को ग्रहण किया, राधा जी का अंग कांति और उनका भाव किस लिए, कृष्ण के प्रेम का स्वादन करने के लिए, कृष्ण अपना ही प्रेम स्वादन करने के लिए, अपने रूप माधुरी इत्यादि। राधा जी का जो भाव लिया किस लिए, किस लिए, क्या साधन करेंगे, अपना रूप, अपनी माधुरी में अपना प्रणय, और कौन जातीय सुख हो राधा जी को होता है। ये राधा जी का भाव लिए बिना कभी संभव पर नहीं, इसलिए उस भाव को लिया। किंतु किस लिए लिया है, इसलिए मुख्य न होकर के गौण रहेगा। आ रहा है कुछ समझ में, नहीं आया फिर से देखो, राधा जी का भाव लिया ये मुख्य हेतु नहीं है। क्यों, क्योंकि राधा जी का भाव लेकर के एक चीज दूसरे चीज को ग्रहण करना चाहते हैं, आस्वादन करना, वो ग्रहण करना क्या है, वही मुख्य है, वो क्या, आस्वादन, जो प्रणय है माधुरिमा का आस्वादन है और उससे जो उत्पन्न होता है सुख, राधा जी को जिस रूप में होता है उस चीज को आस्वादन करने राधा जी का भाव जरूर चाहिए। इसलिए राधा जी का भाव हेतु हुआ प्राप्ति के लिए एक मूल चीज को, हाँ मूल गोल चीज को, माने जो तात्पर्य मूल है क्या, मैं कैसा सुंदर हूं, हमारी मधुरमा कैसी है, राधा जी का हमारे प्रति प्रणय कैसा है, और राधा जी को हमको देख करके कैसा सुख होता है, ये तीन चीज की लालसा है। इसलिए उन्होंने राधा भाव जी को अंगीकार किया, ये अब समझो। इसलिए ये मुख्य ना होकर के ये साधन है, साधन है ना, उपाय है आस्वादन करने के लिए। इसलिए अब मूल हेतु जो कर रहे हैं जिसका आस्वादन करने के लिए, वो अब चीज बतला रहा है। क्या आस्वादन करेंगे, एक तो बतलाया साधारण रूप में राधाया, अब इसको ये बतला रहे हैं मूल हेतु। आगे श्लोकेर कैला आभास, अभी आभास बतलाया, पीठ तैयार किया, कोई चीज को अवतरण कराने के लिए उसके लिए पीठ। बलदेव जी पहले आएंगे पीठ से होकर के, कृष्ण जी वहां अवतरित हुए, पहले इसी तरह से सर्वत्र है पीठ होना चाहिए। आधार ही नहीं है तो क्या प्रेम होगा, इसलिए पहले आधार हो। मूल हेतु आगे श्लोके कैल आभास, अब देखो बतला रहे हैं, एबे कही ए श्लोकेर अर्थ प्रकाश, अब मैं इस श्लोक को बतला करके आगे इसका अर्थ प्रकाश कर रहा हूं। कृष्णदास यदि भागवत को पढ़ना है ना, तो आस्वादन करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी से तरीका समझो, एक एक अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ अच्छी तरह से विचार करके आस्वादन कर। हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण नयनाभिराम, हा हा कदानुभविता श्रीपदरम दिशोर। कैसा एक एक का अर्थ लेकर के और अलग अलग बनता है। इसका भी अब ऐसे ही कहेंगे, किसी चीज को समझने के लिए एकदम गंभीर रूप से उस शब्द में ही उस शब्द का अर्थ छिपा, किंतु अर्थ लगाएगा कौन वैसा व्यक्ति हो तो। यदि ये उन श्लोकों का श्रीमद् भागवत का अर्थ नहीं करते, जैसे कि कुरुक्षेत्र में गोपियां गई हैं कृष्ण से मिलने के लिए, कुरुक्षेत्र में नंद बाबा इत्यादि, वहां पर श्लोक क्या है याद, गोप्यश्च कृष्णम उपलब्ध चिरादभीष्टम यद प्रेक्षणे इत्यादि श्लोक है। चिराद अभीष्टम कृष्ण को आज बहुत दिनों के बाद में पाया, बस कृष्ण को अपने आंखों के माध्यम से हृदय में लेकर और एकदम अंक में भर लिए और जड़ जैसी बन गई। ये सब का जो वर्णन किया है ना, ये चैतन्य चरितामृत में वो त्रिपदी के द्वारा वर्णन किया है। ये सब कहाँ से दिया है? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि से ये सब दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उन्हीं का तरीका अवलंबन किया, एक एक शब्द का कैसे कैसे अर्थ लेकर के मुक्त प्रग्रह वृत्ति से हजारों अर्थ कर लेते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जी ने आत्मा रामस्य मुनयो उरु ग्रंथा अपि उरु क्रमे कुर्वन्त अहेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि, इसका अर्थ कहाँ तक ले जाएंगे? आत्मा रामस्य मुनयो क्या निर्ग्रंथा अपि उरु क्रमे, उरु क्रमे उरु जिनका क्रम है वामन देव, ना कि उरु क्रम जिनका है त्रिविक्रम, ना उरु क्रम जिनका है वैकुंठ तक, नहीं इससे भी और ले अहेतु किन क्या अहेतु की भक्ति से क्या समझते हो? अभी बतलाया था कुछ दिन पहले, अहेतु की भक्ति माने क्या? प्रभुपाद जी ने कहा शुद्धा भक्ति। शुद्धा भक्ति किसको कहते हैं? रागानुगा। इसकी पर्ज समाप्ति कहाँ होती है? रागात्मिका भक्ति। इसलिए गोपियों के रागात्मिक भक्ति को, कृष्ण के प्रति अनुराग को यहाँ पर अहेतु की भक्ति। अब ये उरुक्रम माने जिनका क्रम बढ़ता है, कैसे? कृष्ण के जो ब्रज के जो गुण हैं, कितने? 64 नहीं रहे ललित, 29 या कितना? अच्छा, ये जो भक्ति गोस्वामी सिंधु में सुरमंग्य तो ये सब गुण जहाँ पर कृष्ण के अत्यंत मधुर रस के अनुरूप कृष्ण का ये सब गुण प्रकाशित हुआ, वो है उरुक्रम। उरुक्रम ही जिनके चित्त के यान है, अथवा उरुक्रम के चित्त के जाम के, ये चित्त कौन है? गोपियां। कृष्ण निरंतर अपने मन के रथ के ऊपर में गोपियों को बैठाए हुए उन्हीं की चिंता कर, अथवा गोपियां कृष्ण को अपने मनोरथ पर सब समय चिंतन का करती है, दोनों अर्थ। यहाँ पर उरुक्रम से वहां उरुक्रम ले जाओ, और अहेतु की भक्ति से लेकर के लेते चलो स्नेहमान प्रणय और आगे तक बढ़ो। ऐसे गुणों को अनुभव करके सुखदेव गोस्वामी जी जन्म से जो नैर्गुण्य है उस नैर्गुण्य को छोड़ करके जलांजलि दे करके और उस प्रेम में डूब गए, ये तात्पर्य। इसलिए ये लोग यदि अर्थों को प्रकाश नहीं करते, हम लोग नहीं समझ सकते थे, केवल साधारण अर्थ से श्रीमद् भागवत को नहीं देखा जाए। चैतन्य महाप्रभु ने जिस दृष्टि से देखा उस दृष्टि को हमारे स्वरूप दामोदर राय रामानंद, और उसी दृष्टि से पीछे से हमारे षड़ गोस्वामी लोग, और उन्हीं दृष्टि से उनके बाद में उनके अनुगत रूपानुग जो वैष्णव है उन्होंने देखा, उसी को इसी श्लोक को ये बतला रहे हैं। ये श्लोक किसका है? स्वरूप दामोदर जी का कर्चा है। कर्चा माने क्या? कर्चा किसको कहते हैं? इस श्लोक में और साधारण श्लोकों में क्या अंतर है? ये भी श्लोक है और वो भी श्लोक है। कर्चा कहते हैं उसको, जैसे महाप्रभु जी की लीला देख रहे हैं और लीला देखते देखते और जब अपने घर पर गए, अपनी कुटी में, भजन कुटी में गए, और उन्होंने देखा जी महाप्रभु जी ने ये लीलाएं सब प्रकाशित की, और अपने स्वाभाविक छंदों में उसको नोट के रूप में लिख लिया। इसको कहते हैं
कर्चा।
और कारिका भी इन्हीं लोगों में से है, जैसे रूप गोस उनकी मुरारी गुप्त का भी कर्चा था और गौड़पाद इत्यादि ने सांख्य की कारिका लिखी, इन लोगों का कर्चा है, उसको सूत्र रूप में लिख लिया। हम लोग गद्य में लिख लेते हैं, कोई पद्य में लिखे, उन्होंने कर्चा माने बंगला पयारों में लिखा मुरारी गुप्त जी ने, कवि कर्णपुर ने संस्कृत में लिखे, स्वरूप दामोदर जी उनकी सहज स्वाभाविक भाषा थी संस्कृत, इसलिए उसमें उन्होंने लिखा अत्यंत मधुर रूप में। अब वो हम लोगों के लिए आदर्श और उदाहरण हो गया। राधा कृष्ण प्रणय विकृत अह्लादिनी शक्ति स्मात एक आत्मा नव भू पुरा देह भेदं गतौतौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयं चाप्तम ऐक्यमाप्तम राधा भाव दुतिश बलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। कितना बज गया? साढ़े पांच बजे आरंभ किया। आज इसे श्लोक का साधारण व्याख्या करके इनकी जो व्याख्या है, और एक व्याख्या है तुम लोगों को याद होगी जगदानंद पंडित की प्रेम वैवर्तन, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसका भी प्रकाश किया है। हम दोनों की व्याख्या हम लोग करेंगे तब इसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। साधारण इसका अर्थ ये है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण की प्रणय विकृति रूप लादनी शक्ति के माध्यम से राधा कृष्ण स्वरूपतः एकात्मक एक आत्मा होकर के भी विलास के लिए नित्य ही राधा और कृष्ण दो रूपों में नित्य विराजमान, प्रारंभ से ही जगत आरंभ होने के पहले से ही नित्य गोलोक वृंदावन में ही ये दोनों दो रूपों में अवस्थित हैं विलास के लिए, वैसे एक हैं, पहले एक ही थे और दो हो गए, और पहले दो थे फिर एक हो गए। जागतिक बुद्धि से इसका सामंजस्य नहीं होगा, यह गड़बड़ हो जाएगा। इसका जन्म नहीं है और इसका जन्म है। कृष्ण का, कृष्ण अजय हैं, यशोदा के पुत्र हैं, जगत में ऐसा नहीं है, किंतु उस जगत में कृष्ण में ये विरोधी भावनाएं भी परस्पर संभव हैं। तो वो नित्य दो हैं और एक हो गए, और एक ही हैं दो हो गए, पहले कौन है, पहले एक है कि दो है?
दोनों ही
है। एक रूप में चैतन्य महाप्रभु हैं और दो रूपों में, तो एक रूप में महाप्रभु क्यों है? वो हम लोग जैसे आदमी जो धारण नहीं कर सकते हैं इस विचार को, उनके लिए कह दिया, उनके लिए कहा, जो इस विचार को, अद्भुत विचार को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उनके कहा अच्छा भाई ठीक है, तो कृष्ण ही अकेले थे और उनसे, उनके बाम अंग से राधा जी प्रकट हुए, ये समझाने के लिए। किंतु ऐसा कभी नहीं है जो राधा कृष्ण है ही नहीं है, वो नित्य ही है, और वही दोनों तत्व अभी एक स्वरूप में मिल करके चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। कब? अभी 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 कुछ दिन पहले, 400-500 वर्ष पहले। तब इससे मालूम होता है कि दोनों अभी मिल करके एक हुए हैं। अब फिर बोलते हैं पहले एक ही थे और उससे ये दो, कैसे ये हुआ, अब कल विस्तृत रूप से इस विषय का विचार करें। आप लोग भी देख करके आएंगे तब फिर समझ में आएगा, आज यहीं तक रहें। पंचा कल्पतरुभ्यश्च गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकर्तर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनानुतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां चरणन्ति श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी पहले चैतन्य महाप्रभु जी के जगत में अवतरित होने का गौण हेतु बतलाया। दो गौण हेतु बतलाए, धर्म की स्थापना और युग धर्म की स्थापना, ये दो। और मुख्य कारण में अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना, और इसके बाद में ये बतला रहे हैं चतुर्थ। राधा या प्रणय विकृति लादिनी शक्ति स्मार एक आत्मानाव भूपुरा दे भेदम गतौतौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयं च आक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूप। ये श्लोक मूलतः स्वरूप गोस्वामी का कर्चा से लिया गया है। महाप्रभु के अंतरंग में से एक है, दो अंतरंग प्रधान, जिसमें कि प्रधान में भी प्रधान अंतरंग ये स्वरूप जी दामोदर जी। महाप्रभु की प्रत्येक लीला को उन्होंने अपने कर्चों में लिख रखा है। पीछे से यही रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी, रघुनाथ दास गोस्वामी इन कर्चों को देख करके, फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को रघुनाथ दास गोस्वामी ने कर्चे समेत ये सारी कथाओं को सुनाया, उसके आधार पर ये चैतन्य चरितामृत विश्वास करके स्वरूप गोस्वामी का कर्चा, मुरारी गुप्त का कर्चा, रघुनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की कथाएं को सुन करके ये चैतन्य चरितामृत उसका फल है। उसमें ये बतला रहे हैं महाप्रभु जी के अवतरण का मुख्य कारण राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति स्मात एकात्मानावभू पुरा देह भेदम गतौत। साधारण रूप में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसका ये अर्थ किया, राधा कृष्ण की जो प्रणय है, प्रेम का एक उन्नत भाव जो प्रणय है, वही विकृत होकर के, विकृत होता है तो उसको लादिनी शक्ति कहते हैं। वही शक्ति, उसी शक्ति से परतत्व एक होते हुए भी दो रूपों में, राधा और कृष्ण के दो रूपों में जगत में प्रकटित है, और पुनः वो दोनों होने पर भी चैतन्य आख्या, पहले ये चैतन्य के रूप में है एक रूप में, और पीछे से ये दो हुए, और फिर दोनों मिलकर के एक हो करके प्रकट अधुना, अधुना प्रकटित हो करके, अधुना मैंने अभी ये स्वरूप दामोदर जी कह रहे हैं, मैंने उस समय की बात, जिस समय में ये लिख रहे हैं उस समय में ये चैतन्य महाप्रभु हैं, वहाँ लीलाएं कर रहे हैं। अधुना तद द्वयम् ऐक्य आप्तम एक हो गए, और एक होकर के चैतन्य महाप्रभु जी हुए। ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कृष्ण के स्वरूप हैं, किंतु राधा भाव भाव एवं दूति सुबलित हैं, इसलिए वह कृष्ण स्वरूप जो कि राधा जी के भाव और कांति से देदीप्यमान है, जो चैतन्य के रूप में इस समय महाप्रभु के रूप में गौरचंद्र के रूप में जो प्रकटित है, मैं उसकी पुनः पुनः वंदना कर रहा हूँ, नमस्कार उनको कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी अर्थ कर रहे हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, राधा और कृष्ण दोनों की जो आत्मा है वो एक है, दो रूप धारण किया, दो रूप धारण कर लिया। कैसे? एक कीड़ा होता है लंबा सा, उसको काट दो तो वो दो होने जाते हैं, मरते नहीं हैं। केचुआ ही जैसा हो। और एक कोई लता होती है तो सभी लताएं प्राय, उनको बीच से काट करके उसको लगा दिया है तो दोनों में जड़े हो जाती हैं और दोनों से ही हो जाता है। तो एक ही लता है ना कि दो है? एक थी उससे फिर दो हो गई, हजार हो गई कलम के द्वारा। तो राधा कृष्ण देखने में दो हैं किंतु इनकी एक आत्मा है, ये दो देह धारण करते हैं। यदि कृष्ण राश में हजार कृष्ण हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, हजार कृष्ण हो गए, तो राधा और कृष्ण दो रूपों में ही क्यों नहीं वो हो सकता है? क्योंकि शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं, उस शक्ति के द्वारा वो दो रूप में विभक्त हो जाते हैं, दो रूप धारण करते हैं। किस लिए? अनन्य विलास रस आस्वादन करी, एक दूसरे का विलास जो है उसका आस्वादन, विलास में क्या आनंद है उसको आस्वादन करने के लिए दो देह को धारण करते हैं। सही दुई, वही दो जो राधा कृष्ण जो हुए हैं इस समय में चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकटित हैं, भाव आस्वादिते दो हैं, हैर एक ठाई, वही दोनों अब भाव आस्वादन करने के लिए एक जगह हो गए। क्या भाव, क्या आस्वादन करेंगे? दोनों तो भाव आस्वादन करने के लिए दो हो गए, अब कौन सा भाव बाकी रह गया जिसको आस्वादन करने के लिए एक हो गए? इथे लागी आगे को ही तहार विवरण, इसको अभी सहजना इतना सहज नहीं है, लाख जन्मों तक तर्क वितर्क करके समझने की चेष्टा करेंगे तनिक भी समझ में नहीं आएगा, और शरणागत होकर के इसको, भगवान के शरणागत होकर के इन चीज को आसानी से समझ सकते हैं, तर्क वितर्क के द्वारा नहीं कर सकते। क्यों? ये अपराकृत तत्व अचिंत व्यापार है जिसकी मन से चिंता नहीं कर सकते हैं, किंतु कर सकते हैं शास्त्र अवधारणा मई बुद्धि के द्वारा। शास्त्र अवधारण बुद्धि माने क्या? शास्त्रों के अनुसार में शास्त्र जैसा कर रहे हैं उन शास्त्र, कृष्ण भी शास्त्र भी कृष्ण स्वरूप है, इसलिए इनको साधारण पुस्तक मत समझना, वो जैसे कृष्ण कृपालु हैं ऐसे शास्त्र भी कृपालु होते हैं। यहाँ तक कि वेद को माता कहा गया है, गायत्री को माता कहा गया है, उनमें सब शक्तियाँ हैं, वो अपने को जना सकती हैं, ऐसा समझ करके मंत्रों का पाठ, मंत्रों का जप सब करना चाहिए, पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। प्रणाम करो, पहले प्रणाम करो, जय, मैं समझ नहीं सकता, आप कृपा करके हमको हमारे हृदय में अपना अर्थ प्रकाशित करें, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। जागतिक बुद्धि के द्वारा एक इतना भी नहीं आएगा, संदेह आएगा, और संदेह के द्वारा रही सही श्रद्धा भी, इसलिए कहते हैं इथे लागी, इसको समझाने के लिए मैं कही तार, मैं आगे कुछ कह रहा हूँ, विवरण कर रहा हूँ, जहाँ तो है गौरांगेर महिमा कथा, जैसे कि गौरांग की महिमा कुछ समझ में आएगी अन्यथा नहीं आएगी। उनको साधारण एक भक्त समझेंगे, कृष्ण का स्वरूप नहीं समझेंगे। अधिकांश लोग जो इन ग्रंथों को नहीं समझते हैं, उस परंपरा से संबंध नहीं है, महाप्रभु को साधारण एक भक्त। जैसे हमारे वृंदावन के और झूसी इलाहाबाद वाले एक महात्मा हैं, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, झूसी में मूल रहने वाले थे। वो गीता प्रेस में बहुत दिनों तक काम उन्होंने किया, कार्य लेखन इत्यादि किया, पीछे से संत होकर के चले आए ये वृंदावन में, वृंदावन के उस पार में उन्होंने किया। तो उन्होंने 7 खंडों या कितने खंडों में, 5 खंडों में महाप्रभु जी की लीला जीवन चरित्र का अंकन किया है। सुंदर है ग्रंथ, किंतु होने पर भी उनको भक्त के ही रूप में उन्होंने वर्णन किया। उनका उपजीव्य ग्रंथ चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत, कवि कर्णपुर का चैतन्य महाकाव्य और सब ग्रंथ हैं, उनसे लिया, साहित्यिक हैं, लिखा। किंतु उनका जो विषय था, जो ये भगवान है, कृष्ण है स्वयं, लीला विलास के लिए इस रूप में, इस चीज को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उस रूप में उनको शिक्षा नहीं मिली। बहुत से लोग भागवत सुनते हैं, वो महाभारत सुनना अधिक पसंद करते हैं, ये कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, गोपियों के वस्त्र चुराना और गोपियों के साथ राजनीति इत्यादि करना, ये गंदी बातें हैं, ये कृष्ण के चरित्र में नहीं है। कृष्ण का चरित्र वही अच्छा है जिसमें कि उन्होंने विराट रूप विश्व दिखलाया है और राजनीति अंतिम हद तक की, और बड़े वीर हैं,